आचार्य श्रीमत विद्यारण्य स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 73वें श्लोक की चर्चा हो चुकी है। 74वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। 73वें श्लोक में बताया गया उपासना का प्रकार, आनंदादि विधेय गुण और अस्थूलत्वादि निषेध्य गुण से उपलक्षित जो स्वरूप मात्र है, अखंड एक रस, उसकी एक वृत्ति बनेगी आनंदादि विधेय गुणों से तथा अस्थूलत्वादि निषेध्य गुणों से उपलक्षित सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देश काल वस्तु से अपरिछिन्न चेतन मैं हूं। ऐसी ये वृत्ति बनी तो इसी वृत्ति का आवर्तन सोहम अस्मि ऐसा ये हो जाएगी निर्गुण की उपासना। इसे कहा गया कि सो अहम अस्मि इत्येवम् उपासते। उपासते क्रियापद के कर्ता हैं मुमुक्षव, मोक्ष चाहने वाले इसी वृत्ति का आवर्तन करते हैं। इसलिए और बृहदारण्यक में इसी को कहा गया तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण। तो ब्रह्म जिज्ञासु शास्त्र से जैसा शास्त्र उपलक्षित करा रहा है अशब्द तत्व को, शास्त्र से उपलक्षित करके फिर वैसा ही प्रज्ञाकरण करें। प्रज्ञाम कुर्वीत का अर्थ है बार बार वैसी ही वृत्ति अपने प्रयत्न से बना ले। शास्त्र ने जैसा आत्मस्वरूप को उपलक्षित कराया है आनंदादि विधेय गुणों ने तथा अस्थूलत्वादि निषेध गुणों ने, आपका जो स्वरूप बताया और यदि शुद्ध चित्त है तो उपलक्षित हुआ। तो एक बार उपलक्षित होने का अर्थ है एक बार आपकी चित्तवृत्ति इन शब्दों के माध्यम से अशब्द तत्व के आकार की बन गई, वास्तविक स्वरूपाकार एक बार बन गई। तो फिर उसी वृत्ति का बार बार आवर्तन करें। एक बार वृत्ति बन गई तो ज्ञान क्यों नहीं कहा जाएगा? वो ज्ञान तो है लेकिन अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक होता है दृढ़ अपरोक्ष। वो अपरोक्ष में यदि अदृढ़ता रहेगी तो वह संशय विपर्य के साथ शास्त्रजन्य अपरोक्ष ज्ञान अदृढ़ ज्ञान कहलाता है। वह अपरोक्ष अध्यास का निवर्तक नहीं बनता। इसलिए ज्ञान हुआ लेकिन ज्ञान का प्रयोजन जो समूल अध्यास की निवृत्ति है वो नहीं हो पाई। तो ज्ञान होना न होना एक जैसा हुआ। इसलिए फिर विपर्य को मिटाने के लिए क्यों दृढ़ अपरोक्ष नहीं हो पाया, उस अपरोक्ष के दृढ़ता में प्रतिबंधक कौन रहा? वो है विपर्य। उसे कहा जाता है अशुभ संस्कार, विपरीत भावना, विपर्य। और उसको हटाने के लिए जरूरी है फिर शास्त्र ने जिस हमारे स्वरूप को उपलक्षित कराया है उसी स्वरूप के आकार की हम अपने प्रयत्न से बार बार वृत्ति का आवर्तन करें, तो वो मानी जाती है निर्गुण की उपासना। उसे माना जाता है स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति विवेक चूड़ामणि की। उसे कहा जाता है गीता की अव्यभिचारिणी भक्ति, और उपनिषदों की भाषा में निधिध्यासन, विद्यारण्य स्वामी जी की भाषा में निर्गुण की उपासना। अब 74वें श्लोक के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं एक शंका, उसका उत्तर देने के लिए 74वां श्लोक है। ननु एवं सति विद्योपासनयोः कुतो भेदस इति आशंक्य आह। नन वेवम सति, यहां इकोणचि हुआ, ननु एवं ऐसा था तो ऊ को वह हुआ ना, और विद्योपासनयोः इसमें था विद्या और उपासना, आदगुण से गुण हुआ वो, तो विद्या यानि ज्ञान और उपासना यानि ये ध्यान, तो ज्ञान और ध्यान में भेद कैसे होगा, वृत्ति का आवर्तन उपासना है तो उस आवर्त्यमान वृत्ति का विषय कौन है, निर्विशेष ब्रह्ममय। इस वृत्ति का आवर्तन उपासना कहला रहा है, ध्यान कहला रहा है, फिर ज्ञान क्या है, वो भी तो वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूं इत्याकारक, मैं ब्रह्म हूं इत्याकारक वृत्ति का ही नाम ज्ञान भी है, और मैं ब्रह्म हूं इत्याकारक वृत्ति का आवर्तन ही आप उपासना कह रहे हो, तो इन दोनों का, ध्यान और ज्ञान का जो अंतर है, भेद है, वैलक्षण्य है, वो समझ में नहीं आ रहा है, पूर्व पक्षी कहता है कि एवं सति विद्योपासनयोः कुतो भेद। तो ध्यान और ज्ञान का भेद यानी वैलक्षण्य कैसे होगा, किससे सिद्ध होगा, कुतो शब्द का अर्थ है किस हेतु से सिद्ध होगा। तो 74वें श्लोक में विद्यारण्य स्वामी जी ज्ञान और ध्यान में जो भेद है, वैलक्षण्य है, उसे स्पष्ट करते हैं, बताते हैं ज्ञान और ध्यान का वैलक्षण्य अंतर। इसलिए कहते हैं वस्तुतंत्र कर्तृतंत्रत्वाभ्याम भेद इत्याह। कहते हैं ज्ञान वस्तुतंत्र है और ध्यान कर्तृतंत्र है। तंत्र शब्द का अर्थ है अधीन, तो वस्तु के अधीन है ज्ञान और ध्यान है पुरुष के अधीन, कर्ता के, पुरुष यानी कर्ता। तो ध्याता कहो, उपासक कहो, उपासक जैसा शास्त्र ने बताया है ऐसा भी ध्यान कर सकता है, शास्त्र जैसा नहीं बताता है अपनी इच्छा से विपरीत भी कर सकता है ध्यान। जो कर्तृतंत्र होता है उसमें कर्ता स्वतंत्र होता है, शास्त्र ने जैसा करने के लिए बताया वैसा करने में भी, अन्यथा करने में भी और न करने में भी। अनुष्ठेय वस्तु के विषय में कर्ता स्वतंत्र होता है, लेकिन प्रमाता प्रमा में स्वतंत्र नहीं है। यदि प्रमाण है और विषय है, प्रमाण और विषय का संबंध हुआ तो प्रमाता नहीं चाहेगा तब भी उस प्रमेय का ज्ञान होगा ही होगा, क्योंकि प्रमाता के चाहने न चाहने से प्रमा नहीं होती, प्रमा होती है प्रमाण और प्रमेय के अधीन। तो वस्तु से लेना है प्रमेय को, वो उपलक्षण है प्रमाण का भी, तो प्रमाण तथा वस्तु के अधीन ज्ञान है और कर्ता की इच्छा के अनुसार ध्यान होता है। जैसा शास्त्र कह रहा है आनंद आदि से उपलक्षित स्वरूप के आकार की वृत्तियों का आवर्तन करो, ऐसा भी कर सकता है साधक, अन्यथा भी कर सकता है, का मतलब आनंद आदि गुणों से विशिष्ट करके भी कर सकता है, आनंद आदि को विशेषण मान करके और उपाधि मान करके भी कर सकता है और उपलक्षण मान कर भी कर सकता है। तो उपलक्षण मान करके स्वरूप मात्र का आवर्तन, ये शास्त्रानुसार ध्यान हुआ, और उसे उपाधि युक्त मान करके या विशेषण युक्त मान करके करना, ये शास्त्र ने जैसा नहीं बताया उसे विपरीत करना जैसा हो गया, और न करना भी, सुन तो रखा, उपलक्षित भी हुआ लेकिन आलस के कारण नहीं कर रहा है, हाँ तो इसमें स्वतंत्र हो गया, एक पुरुष तंत्र है। इसलिए कहते हैं कि वस्तु तंत्र कर्तृतंत्रत्वाभ्याम भेद, ज्ञान और ध्यान में ये भेद है। बोधोपास्त्योर्विशेष क इति चेदुच्यते श्रृणु वस्तुतंत्रो भवेद् बोध कर्तृतंत्रमुपासनम्। तो बोधोपास्त्योर विशेषः कः इति चेत्, इति चेत यानी ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि बोध यानी ज्ञान और उपास्ति यानी ध्यान, इन दोनों में विशेष यानी अंतर वैलक्षण्य कह, तो क्या वैलक्षण्य रहेगा ज्ञान और ध्यान में, ऐसा प्रश्न यदि पूर्व पक्षी पूछते हैं तो सिद्धांति कहते हैं उच्यते श्रृणु, यानी अस्माभिः वैलक्षण्यम उच्यते त्वं श्रृणु, उच्यते भी क्रियापद है, श्रृणु भी क्रियापद है, उच्यते कर्मवाच्य है, इसका कर्ता का, इस उच्यते क्रिया के कर्ता का वाचक पद तृतीयांत होगा, वो है अस्माभिः, अस्माभिः सिद्धांति भी, हम सिद्धांति के द्वारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताया जाता है, उच्चते का अर्थ निकलेगा त्वम श्रृणु, तो तुम सुनो, श्रृणु का कर्ता होगा युष्म, त्वम यद्यपि यहां लिखा नहीं लेकिन उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो हम बता रहे हैं आप सुनो, तो उत्तरार्ध में दोनों का अंतर बता रहे हैं कि वस्तुतंत्रो भवेद् बोधः, जो ज्ञान है वह प्रमेय के अधीन होता है, कर्ता के अधीन नहीं, यानी प्रमाता के अधीन नहीं, प्रमाता नहीं चाहे प्रमाण और प्रमेय का संबंध होने पर ज्ञान हमें न हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो होगा ही होगा, वो यदि स्पष्ट प्रकाश है यानी प्रमा के जो प्रमा की जो सामग्री है वो सारी की सारी उपस्थित है, और वो चाहे कि रज्जू हमें सर्प के रूप में दिखे तो रज्जू सर्प के रूप में उसे नहीं दिखेगी, उसकी इच्छा से, अन्यथा नहीं दिखेगी, जैसी है ऐसी दिखेगी, यदि स्पष्ट प्रकाश है आंख के सामने है तो उसके बुद्धि में सर्प का संस्कार उद्भूत होने पर भी और उसकी इच्छा सर्प को देखने की होने पर भी वो उद्भूत संस्कार सर्प का स्मरण करा दे अलग बात, लेकिन सामने वाली वस्तु वो हमें सर्प के रूप में दिख जाए ऐसी इच्छा करने से वो सर्प नहीं दिखेगी रजू, यदि प्रकाश वगैरह आदि सब सामग्री है तो वो रस्सी ही दिखेगी। तो प्रमाता के चाहने न चाहने से ज्ञान अन्यथा नहीं होता, उपमेय तंत्र माना जाता है, वस्तु तंत्र माना जाता है। हाँ, तो वस्तु तंत्रो भवेद बोध कर्तृतंत्रम उपासनम, तो कर्ता के अधीन उपासना है, उपासना कर्ता के इच्छा अनुसार होगी, ये वैलक्षण्य हुआ। अब 75वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए, और भी वैलक्षण्य बता रहे हैं ध्यान और ज्ञान में। वैलक्षण्यांतर सिद्धये बोधस्य हेत्वादिकं दर्शयति विचाराद् जायत इत्यादिना श्लोकद्वयेन। तो ये 75-76 इन दो श्लोकों का एक साथ अवतरण है टीका में। तो वैलक्षण्यांतर का अर्थ हुआ, वैलक्षण्य शब्द से तो लिया जाएगा 74वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो ज्ञान और ध्यान में अंतर बताया, वह वैलक्षण्य शब्द का अर्थ निकलेगा, उक्त वैलक्षण्य, वह वैलक्षण्य है। और वैलक्षण्यांतर शब्द का अर्थ निकलेगा उक्त अंतर से भिन्न अंतर, और भी इसमें खाली इतना ही अंतर है ऐसा नहीं, ध्यान और ज्ञान में इतना ही भेद है ऐसा नहीं है, कर्तृतंत्रत्व पुरुष और वस्तुतंत्रत्व इतना ही भेद नहीं है, और भी भेद है। तो वैलक्षण्यांतर का अर्थ हुआ और भेद, उसकी सिद्धि के लिए, उसका सिद्धि का अर्थ होता है निश्चय। तो कर्तृतंत्रत्व वस्तुतंत्रत्व रूप भेद से अतिरिक्त भेदों का भी निश्चय ज्ञान और ध्यान के कराने के लिए, ज्ञान और ध्यान में और भी जो वैलक्षण्य है उसे बता रहे हैं। तो सिद्धये बोधस्य हेत्वादिकं दर्शयति, तो ज्ञान का हेतु फल बताया जा रहा है। तो बोधस्य यानी ज्ञानस्य, हेतु यानी साधन और आदि शब्द से फल को लीजिए बताते हैं, किससे तो कहते विचारात् जायते इत्यादि ना श्लोकद्वयेन, 75-76 इन दो श्लोकों से। विचारात् जायते बोधो निच्छा यन्न निवर्तयेत् सोत्पत्ति मात्रात् संसारे दहत्यखील सत्यताम। तो बोध का साधन है विचार, जो अखंडिक रस ब्रह्म है उसके उपलक्षक वेदांत वाक्यों का विचार करने से अखंडिक रस ब्रह्म का बोध होगा, ज्ञान होगा। तो ज्ञान का साधन हो गया विचार, विचारात् जायते बोधो, और यम यानी यम बोधम अनिच्छा न निवर्तयेत, निवर्तयेत का कर्ता है अनिच्छा। तो यम यानी जिस बोध को अनिच्छा यानी कर्ता की अनिच्छा, इच्छा का अभाव, रोक नहीं सकता, हमारी इच्छा नहीं है सामने पड़ी हुई वस्तु को देखने की, इतने मात्र से वो वस्तु नहीं दिखेगी ऐसा नहीं, आपकी इच्छा हो न हो यदि आंख खुली है और आंख के विषय के साथ आंख का संसर्ग हो गया है तो आपको वो वस्तु देखनी ही पड़ेगी, उसका ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं अनिच्छा यम न निवर्तयेत। तो प्रमाता की अनिच्छा जिसको रोक नहीं सकती, जिस ज्ञान को हटा नहीं सकती, यदि सामग्री सब है तो। ये ज्ञान के विषय में हुआ। और ज्ञान करता क्या है, ये तो ज्ञान के साधन हो गए। अनिच्छा जिसको रोक न सके, और विचार से जो उत्पन्न होता है वह ज्ञान है। और इसका फल क्या है, तो फल बताया जा रहा है कि सोत्पत्ति मात्रात संसारे अखिल सत्यताम दहती। दहती और अखिल, कौन सा सूत्र लगाया, दहत्य अखिलम, ई को यण अच्छी, तो ई के स्थान पर यण हो गया ना, दहती अखिल सत्यताम। अखिल सत्यताम का मतलब संपूर्ण सत्यत्व बुद्धि को, किसमें, तो संसारे, तो संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है उसे थोड़ा जलाती है और थोड़ा बचाती है, ऐसा नहीं। ज्ञानाग्नि जब प्रकट होता है बुद्धि में, तो संसार विषयक जो सत्यत्व निश्चय है, जब तक अज्ञान रहेगा अद्वैत का, तब तक द्वैतात्मक संसार सत्य प्रतीत होगा। द्वैतात्मक संसार की सत्यता टिकी हुई है अद्वैत के अज्ञान पर। यदि अद्वैत का अज्ञान है जब तक, तब तक संसार है। और जैसे ही अद्वैत रूपी परमात्मा कहो, आत्मा कहो, अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़ देगा, तो अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़ना है ज्ञात हो जाना, उसका बोध हो जाना। तो बोध होते ही फिर ये द्वैत रूपी संसार बाधित हो जाता है, उसमें सत्यता नहीं रहती। तो संसारे अखिल सत्यताम दहती, तो सारी सत्यता को जलाने का अर्थ है बाधित करना। ये नहीं कि जो जो हमारे प्रतिकूल है वो बाधित हो जाएंगे और अनुकूल बने रहेंगे। अनुकूल प्रतिकूल सबको ज्ञान बाधित कर देगा। ज्ञान ही नहीं होगा, मुक्त नहीं होना है जिसको ऐसा इच्छा, अच्छी इच्छा रहेगी तो। ज्ञान कैसे होगा जिसको ये निश्चय है कि मुझे मुक्त नहीं होना है, तो मुमुक्षा ये जिज्ञासा की हेतु बन जाती है, तो उसको ज्ञान की इच्छा ही नहीं होगी, तो ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान नहीं होगा, वो विचार में प्रवृत्त ही नहीं होगा। मुमुक्षा मोक्ष के साधनभूत ज्ञान के अंतरंग साधन विचारादि में प्रवृत्त करती है। तो मुमुक्षा नहीं है तो विचार ही नहीं करेगा, वो विचार नहीं करेगा तो ज्ञान कैसे होगा। तो विचारा जायमानम यम बोधम, हाँ, तो विचार से उत्पन्न होने वाला जो बोध है उसे एक तो अनिच्छा रोक नहीं सकती, और दूसरा ये कहा गया कि उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है सोत्पत्ति मात्रात, इसमें स्व का अर्थ है ज्ञान, जो उत्पन्न हुआ बोध, विचार से उत्पन्न हुआ बोध, उसे स्व शब्द से लीजिए। और सोत्पत्ति का मतलब ज्ञान की उत्पत्ति, तो अपनी उत्पत्ति मात्र से ज्ञान, अपनी उत्पत्ति मात्र से यानी उत्पन्न होते ही, अपने उत्पत्ति के साथ साथ किसी सहायक अंतर की अपेक्षा किए बिना सारे संसार में सत्यत्व बुद्धि को बाधित कर देता है, जला देता है, मतलब सारे संसार को जला करके भस्म करने का सामर्थ्य अकेले उत्पन्न हुए ज्ञान में है। और ये नहीं कि पहले थोड़ा उत्पन्न हो, जैसे लौकिक अग्नि उत्पन्न होता है तो थोड़ा शुरू में कम प्रभावी रहता है और फिर उसे बढ़ाने के लिए थोड़ा फूंक आदि लगा करके बढ़ाते हैं। अरणिमंथन देखा है कि नहीं? तो अरणिमंथन के समय तो थोड़ी सी चिंगारियां निकलती है लकड़ी से, फिर उसे रुई आदि में डाल करके जो ऋत्विक लोग हैं वे फूंकने से फूंक लगाते हैं, ऊपर से कर्पूर आदि डाल करके प्रकट करते हैं और फिर वो आवनीय कुंड में स्थापित करते हैं और फिर वो एक बार प्रकट हुआ तो उससे जितना जलाना चाहोगे वो जल सकता, लेकिन शुरू में तो वो थोड़ी चिंगारी जो निकलती है उसको अंगुली से ऐसे दबा दो तो मिट जाएगी। तो क्या वो चिंगारी के रूप में प्रकट हुए अग्नि के तरह ज्ञान दब भी जाएगा? तो कहते ऐसा नहीं, उत्पत्ति मात्र है ना, उत्पन्न होते ही उत्पत्ति के साथ ही साथ इतना वो बलवान होता है, कई गाड़ियां होती है ना, चल बस चाबी लगाई स्पीड तुरंत पकड़ लेती है, धीरे धीरे स्पीड नहीं पकड़ती। ऐसे ही ये जो है ज्ञान उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति के साथ ही साथ समर्थ होते हुए ही उत्पन्न होता है और उसी क्षण उत्पत्ति क्षण में ही सारे संसार में सत्यत्व बुद्धि को जला देता है। तो संसारे अखिल सत्यताम दहति, ये ज्ञान का साधन विचार हुआ और अनिच्छा से उसका अवरोध नहीं हो सकता, ये उसका अपना सामर्थ्य हुआ और संसार को बाधित करना ये फल हुआ। आगे कहते हैं टीकाकार इसका अर्थ करते हुए, विचारात वस्तु तत्व विचारात, यानी विचार से ज्ञान होता है, का मतलब किसके विचार से? तो वस्तु के यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप के विचार से। तत्व कहते हैं वास्तविक स्वरूप को, वस्तु कहते हैं आत्मा को, सत्य पदार्थ को। तो ब्रह्म तत्व विचार से बोध होगा और किंच विचारा जायमानम यम बोधम अनिच्छा बोधो मा भूत इत्येवम रूपा। तो अनिच्छा का स्वरूप बताया कि बोधो मा भूत, ज्ञान न हो ऐसी जो इच्छा, वह इच्छा यम यानी बोधम न निवर्तयेत, रोक नहीं सकती, यदि बोध की सामग्री है तो बोध होगा, अनिच्छा रोक नहीं पाएगी। तो बोधो मा भूत इत्येवम रूपा अनिच्छा यम बोधम न निवर्तयेत, ऐसा अन्वय करिए। हाँ, न निवारयेत। तो उत्पद्यमानश्च बोधः, और उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो क्या करता है? तो कहते हैं स्वजन्म मात्रात, अपनी उत्पत्ति मात्र से ही संसारे अखिलस्य प्रपंचस्य सत्यतां दहति नाशयति। फिर संसार में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती यदि अद्वैत प्रमा हुई है, तो द्वैत रूपी संसार में बाधि तत्वों का निश्चय होगा, द्वैत का बाध होगा। और भी फल बताया जा रहा है कि तावता कृतकृत्य सन् नित्यतृप्तिमुपागतः जीवन्मुक्तिमनुप्राप्य प्रारब्ध क्षयमीक्षते तो तावता कृतकृत्य सन, इसमें तावत का अर्थ है उतने मात्र से, तावता का उतने मात्र से यानी ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से क्या हो जाता है कि वो कृतकृत्य हो जाता है, उसे फिर समूल संसार का बाद होने से कुछ दूसरा करना बाकी नहीं रहता, अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष उसका सिद्ध हुआ, ज्ञान का फल आ गया। तो फिर नित्य तृप्तिम उपागत, तो तृप्ति का अर्थ है सुख, तो दो प्रकार का सुख है, नित्य सुख और एक वैशेषिक सुख अनित्य सुख। तो ये जो नित्य तृप्ति यानी नित्य सुख यौवय भूमा तत्सुखम से बताया गया अपरिछिन्न सुख, उसे उपागत यानी प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जीवन मुक्ति तो होती है सत्वापत्ति के बाद असंसक्ति पदार्थाभावनी तूर्य का, ज्ञान की तीन सात अवस्थाएं बताई हैं, सात भूमिकाएं बताई हैं, साधन अवस्थाएं हैं तीन ज्ञान की, उन्हें भी ज्ञान कहा जाता है। जैसे गीता में भगवान ने अमानित्वादी साधनों को भी ज्ञान ही कहा है ना, ज्ञान के साधन होने से। तो शुभेच्छा तनुमानसा, हाँ, शुभेच्छा भी कहा जाता है उसे, शुभेच्छा के अंदर ये शुभ विचारणा भी आ जाती है। तो शुभ श्रवण मनन ये शुभ विचारणा हुई, और तनुमानसानी विध्यासन शुभेच्छा शुभ विचारणा विचारणा और तनुमानसा, ये तीन हो गई साधन भूमिका है। शुभेच्छा मुमुक्षा से प्रेरित होकर के ही शुभ विचार होता है, शुभ विचार है वेदांत विचार जो चल रहा है, ये शुभ विचार नाम की भूमिका है द्वितीय ज्ञान की। और फिर तनुमानसा श्रवण मनन के बाद तनुमानसा है निधिध्यासन निर्गुण उपासना, जिसको करने की प्रेरणा यहां पर दे रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। और तनुमानसा की परिपुष्टि जब हो जाती है तो तनुमानसा सत्वापत्ति में परिणत होती है, पूर्व पूर्व भूमिकाओं का पर्यवसान उत्तर उत्तर भूमिका में होता जाता है। तो सत्वापत्ति में ये बताया गया कि सोत्पत्ति मात्रात श्रवण मनन निधि ध्यासन ठीक ठीक हो गया, जो यहां विचारा जायते बोध 75वें श्लोक में बताया गया था, वहां विचार से केवल श्रवण मात्र नहीं लेना, विचार ये उपलक्षण है मनन निधि ध्यासन का भी। तो विचार यानी श्रवण, श्रवण का अर्थ ही विचार होता है, और उस विचार शब्द को केवल श्रवण मात्र रूप न समझ करके, विचार शब्द का वाच्यार्थ श्रवण होगा और उपलक्षार्थ होगा, उपलक्षण होने से लक्षार्थ माना जाएगा मनन निधिध्यासन को भी, शुभ विचार और तनुमानसा, इन दो भूमिकाओं को माना गया सत्वापत्ति भूमिका की साधन अवस्थाएं, और इन साधनों से बोध उत्पन्न होगा, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा। इस साक्षात्कार को यदि तनुमानसा ठीक ठीक हो गई है, विपरीत भावना निवृत्त हो गई है, तो वो कोई रोक नहीं पाएगा, अनिच्छा अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की अवरोधक नहीं बनती। विपरीत भावना से रहित चित्त है, प्रमेय विषयक संशय से रहित है, प्रमाण विषयक संशय विपर्य से रहित है, यानी आपकी साधना से निवर्त्यमान सारे दोषों से रहित चित्त है, यदि शुद्ध चित्त है, ज्ञान से निवर्त्य दोष मात्र चित्त में बचे हैं, साधना से प्रयत्न से निवर्त्य सारे दोष निवृत्त हो गए, और ऐसा चित्त जिस साधक का है उसे पहले से श्रुत तत्वमसी वाक्य से या उस समय श्रुत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा ही होगा। वो बोध हमें न हो ऐसी जो अनिच्छा है बोध की, वह बोध को रोक नहीं पाएगी। अनिच्छा तत्वमसी रूप प्रमाण आ गया और प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप अभ्यंतर वस्तु तो है ही है, तो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, पुरुष के अधीन तो है नहीं, वो ज्ञान होगा। और ज्ञान होने के बाद सत्वापत्ति भूमिका में पहुंच गया तो कृतकृत्य हो जाता है, यानी मुक्त हो ही जाता है, उसका जन्मांतर नहीं होगा। किंतु जीवित अवस्था में जब तक प्रारब्ध है तब तक उसे, जब तक असंशक्ति भूमिका, पदार्थाभावनी भूमिका, ये फल अवस्थाएं हैं उत्तर वाली तीनों, इन अवस्थाओं में चौथी अवस्था से नहीं पहुंचेगा। अभी तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है और उत्पत्ति के साथ साथ अज्ञान को निवृत्त कर दिया, ये फल की प्रथम अवस्था हुई। चार फलावस्था है न ज्ञान की, तो ये प्रथम अवस्था में ही फलावस्था, हाँ तो फल की चार अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं पहले वाली साधन अवस्थाएं हैं, तो ये जो फल की चार अवस्थाएं हैं उनमें से पहली अवस्था में वो कृतकृत्य होगा, उसके विधेय मुक्ति में कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन जीवन मुक्त वो नहीं हो पाएगा, का मतलब उसे जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि जीवन मुक्तिम अनुप्राप्य, हाँ जीवन मुक्तिम अनुप्राप्य, अनुप्राप्य है ना, वो तो मिलेगा, अनुप्राप्य नहीं है मेरे बुद्धि में हुआ, तो जीवन मुक्ति भी मिलेगी, वो जीवन मुक्त भी होगा। उत्तर उत्तर जैसे पूर्व पूर्व साधन भूमिकाओं का परिपाक धीरे धीरे उसे उत्तर उत्तर भूमिका में पहुंचाया ना, शुभेच्छा ने शुभ विचारणा में पहुंचाया और शुभ विचारणा ने तनुमांसा में पहुंचाया, तनुमांसा का परिपाक हुआ तो सत्वापत्ति में आया। ऐसे सत्वापत्ति की परिपक्व अवस्था असंशक्ति में पहुंचाएगी, जब संसार बाधित होगा तो संसार के अंदर ही ये अपना कार्यक्रम संघात भी है ना, कि संसार के बहिर्भूत है, इसलिए ज्ञानी का जो कार्यक्रम संघात है वो अबाधित रहता है ऐसा नहीं, वो भी बाधित हो जाता है। बाधित होने से इस बाधित कार्यक्रम संघात में उसका सत्य आत्माभिमान नहीं रहता, सत्य अभिमान न होने से दो आत्मा तो जो ज्ञानी अपना स्वरूप समझ रहा है वो सत्य है, और ये प्रातिभाषिक हुआ, तीनों शरीर रूप उपाधि भी और बाकी संसार भी, तो संबंध जो होता है हमेशा द्विष्ट होता है और समान सत्ता पदार्थ में होता है। द्विष्ट होता है का मतलब दो में होता है, और कौन से दो में होगा, जो समान सत्ता वाले दो पदार्थ होंगे उनमें संबंध होता है वास्तविक। तो यहां तो अद्वैत ही अद्वैत है, आत्मा परमार्थ सत्य हुआ और आत्मा से अतिरिक्त कारण शरीर से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का सारा कार्यक्रम संघात और उसका भोग्य संसार, ये सब बाधित हो गया। बाधित होने से प्रातिभाषिक सत्ता वाला हुआ, तो विषम सत्ता हो गई, इन दोनों का आपस में संबंध नहीं बनेगा। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर के रहने पर भी शरीर में जैसे पहले वास्तविक अहम बुद्धि होती थी ऐसी अहम बुद्धि नहीं होगी, तो वो जीवन मुक्ति है। तो कहते जीवन मुक्तिम अनुप्राप्य, तनुमानसा निर्विध्यासन को कहता है, वो निर्गुण उपासना, वो साधन भूमिका, वो तीसरी अवस्था है। उसके बाद सत्वापत्ति आई, सत्वापत्ति में अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ, तनुमानसा उपासना है, ध्यान, यहां जो ध्यान बताया जा रहा है वो पुरुष तंत्र है, साधन होने से वो चाहेगा ध्यान करने वाला ध्याता तो निर्गुण की उपासना कर भी सकता है जैसी यहां पर बताई, नहीं चाहेगा तो उसकी अनिच्छा वो उपासना को ध्यान को रोक भी सकती है लेकिन ज्ञान को नहीं रोक सकती, ये सब आगे बताया जाएगा। तो जीवन मुक्तिम अनुप्राप्य, जीवन मुक्ति को प्राप्त करके फिर प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, तो वह प्रतीक्षा करता है किसकी, कि मृत्यु आ जाए जल्दी। अज्ञानी आए हुए मृत्यु को दूर भगाने के लिए प्रयत्न करता है जिससे वो बच सके। ऐसे उपाय संसार में जहां कहीं भी निकले हैं वहां जाकर के सोचता है कि हम बचे जिस किसी भी प्रकार से। तभी जो पोप है, इनसे पहले वाले थे ना, काफी बीमार रहे, 8-10 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ, 10-15 साल हो गए शायद। उनको पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, कहते मैं जीवित रहना चाहता हूं, कुछ भी उपाय करके जीवित रहूं। लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि जो पूर्ण पुरुष है, अपना ज्ञान जिनको हो गया है, वो तो चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, वो हमारा प्रारब्ध जल्दी समाप्त हो जाए। तो जेल है ना, तो जेल में बंद व्यक्ति जितने दिन की उसको सजा का आलम हुआ है वो देखेगा कि इतने वर्ष जल्दी से जल्दी कटे, वो अंतिम दिन की प्रतीक्षा करता रहेगा ना सजा के। ऐसे ही ये प्रारब्ध जब तक है तब तक इस शरीर रूपी जेल में रहना पड़ता है, तो चाहता है कि प्रारब्ध जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए और ये शरीर छूटे। वो तो है ही, वो तो ये थोड़े ही कह रहे हैं कि प्रारब्ध भोगना न पड़े, ये कहा जा रहा है प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, प्रारब्ध का क्षय होने की प्रतीक्षा करता है। श्रुति कहती है तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्षे अथ संपत्स्य, जब तक प्रारब्ध का भोग करके क्षय नहीं होता तभी तक विदेह मुक्ति में विलंब है। तो विदेह मुक्ति के लिए वो प्रयत्न करता है, क्योंकि शरीर का जो प्रयोजन था, शरीर का प्रयोजन क्या है, यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति नो चेद यह वेदिन महति विनष्ट, क्योंकि वो तो कृतकृत्य हो गया, शरीर का प्रयोजन पूर्ण हुआ, लेकिन साथ में पाथे जो लाया था वो ये सोचा कि कहीं कम न पड़े, इसलिए ज्यादा कुछ साथ में लाया था। तो प्रारब्ध जो है थोड़ा जा बचा हुआ फिर तो भोगना ही पड़ेगा, पाथे ऐसे फेंक नहीं सकते, तो प्रारब्ध का क्षय होने की वो प्रतीक्षा करता है। वे कहते जीवन मुक्ति में अनुप्राप्त, यानी दृष्ट फल जो जीवन मुक्ति है वो तो प्राप्त कर लेता है, और प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, वो देखता है कि प्रारब्ध समाप्त हो जाए और शरीर छूट जाए, इसकी उसे प्रतीक्षा रहती है। जैसे कोई प्रियजन लंबे समय से दूर गया हुआ है और आने की प्रतीक्षा हम करते हैं, एक एक दिन गिनते कि अब इतने दिन गए इतने बाकी हैं, अब इतने घंटे गए इतने घंटे बाकी हैं, ऐसे ये भी प्रतीक्षा करता रहता है कि इतने वर्ष गए इतने बाकी है, आ जाए जल्दी जल्दी वो दिन। थोड़ी सी एक वाक्य टीका है, तावता तत्व ज्ञान उत्पत्ति मात्रेन निरति स्वयं सुखम प्राप्नोति। तत्व ज्ञान उत्पत्ति मात्र से वो निरति से सुख को प्राप्त करता है, तो नित्य तृप्ति की प्राप्ति ही तो जीवन मुक्ति है शरीर के रहते रहते। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।